समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार अलका। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी शैल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे. That is the 21st of November. So let's begin with the news headlines first.
भारत और गयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और संबद्ध मामलों के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चिकित्सा उत्पादों, जन औषधि योजना, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, गयाना में यूपीआई प्रणाली लागू करने और प्रसार भारती और गयाना के राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रक्षा संस्थान गयाना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच कल शाम जॉर्जटाउन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और गयाना इस बात पर सहमत हैं कि सभी मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। गयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई चर्चा अत्यंत लाभप्रद रही। उन्होंने श्री मोदी की शासन शैली की सराहना की और गयाना और अन्य देशों को भी अपनाने को कहा। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत जॉर्जटाउन में एक पौधा लगाया। प्रधानमंत्री मोदी आज गयाना की संसद को संबोधित करेंगे। वे गयाना और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रमुख क्रिकेटरों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है।
Prime Minister Narendra Modi has said that India has stood with the CARICOM member countries and moved forward like a trustworthy partner, whether it is COVID or natural disasters, capacity building or development issues. In his opening remarks at the second India CARICOM summit in Georgetown, Guyana last night, Mr. Modi said this summit is being held after 5 years, and in these 5 years, the world has seen several changes and the mankind has to face some huge hardships, he said. It has severely affected the nations of Global South. The Prime Minister said India has always tried to face challenges along with CARICOM. To further strengthen the India-CARICOM partnership, Mr. Modi put forward a seven-pillar proposal, CARICOM, which stands for Capacity Building, Agriculture and Food Security, Renewable Energy and Climate Change, Innovation, Technology and Trade, Cricket and Culture, Ocean Economy and Maritime Security and Medicine and healthcare.
डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को प्रधानमंत्री मोदी का योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर वो सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों, उनके प्रयासों, उनके मूल्यों और उनकी परंपरा का है।
The Central Board of Secondary Education CBSE has announced that the board exams for class 10th and 12th will begin from 15th of February 2025. The board announced that the class 10 exams will conclude on 18th of March and 12th exams will end on 4th of April. CBSE said it has ensured that there is sufficient gap between examinations of subjects that are generally offered by the same student. For the first time, CBSE has released the date sheet nearly 86 days before the examinations.
राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेब्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। वेब्स में रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे कालजयी शो शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत से जोड़ेगा।
द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अनफोल्डेड विद अ डैजलिंग ओपनिंग सेरेमनी यस्टरडे दैट लिट अप द कल्चरल एंड सिनेमैटिक लैंडस्केप। अ कैलाइडोस्कोप ऑफ इंडियाज़ वाइब्रेंट ट्रेडिशंस केम अलाइव थ्रू मेस्मराइजिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेस, सेटिंग द स्टेज फॉर 9 डेज ऑफ क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमैटिक ब्रिलियंस।
चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें,
दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें,
रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा।
उद्घाटन समारोह की प्रमुख झलकियों में रहा वेब्स प्रसार भारती के OTT का लॉन्च, जिसमें आप 12 से अधिक भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया में कार्यक्रम देख सकेंगे। वेब्स इंफोटेनमेंट की 10 से अधिक शैलियों में होगा। ये वीडियो ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेमिंग, रेडियो स्ट्रीमिंग, लाइव टीवी स्ट्रीमिंग और ONDC समर्थित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी से बातचीत के दौरान इफ्फी के फेस्टिवल डायरेक्टर और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने वेब्स लॉन्च के अवसर पर प्रसार भारती को बधाई दी और कहा प्रसार भारती अब अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाने और OTT प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए वेब्स के माध्यम से एक मास्टर प्लान लेकर आया है।
Prasar Bharati still has the biggest reach. Doordarshan is the biggest reach in India, and so now they have a huge plan to create new software, and I wish them all the luck. I think it's fantastic. It should have been done a long time ago. So now we've done it.
भारतीय फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने बताया कि 55वें इफ्फी में सिने प्रेमी और उनके प्रशंसकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। उन्होंने समावेशी फिल्म महोत्सव के महत्व पर भी जोर दिया।
In a video message, Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Ashwini Vaishnav, said that IFFI has become a significant milestone in the development of the Indian film industry. Mr. Vaishnav also said that there is much focus on developing the content creators economy, which is vibrant and rapidly growing. He emphasized that India can play a major role in shaping the creators economy with the integration of technology and development of a robust curators ecosystem. He also expressed hope on emergence of new partnership and fresh ideas from the 55th IFFI. Some of the brightest stars of Cineworld were felicitated in the gala opening ceremony, which was hosted by Indian film actors Abhishek Banerjee and Bhumi Pednekar. Film stalwarts Subhash Ghai, Chidanand Nayak, Boman Irani, R.K. Selvamani, Jaydeep Ahlawat, Jayam Ravi, Ishari Ganesh, R. Sarath Kumar, Pranita Subhash, Randeep Hooda and Rajkumar Rao were felicitated for their immense contribution to cinema. Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, shared a video message on the occasion. In his message, he said, Indian cinema has now expanded to world cinema and emphasized the various steps taken by the ministry to facilitate filmmaking in India.
This IFFI 55th International Film Festival, every year it's glorious, our new things we are here to introducing. Under the dynamic leader, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's guidance, we are working here to take our Indian cinema to the global platform. Indian cinema is playing a huge and major role playing our Indian cinema to the global level. Last year, RRR got prestigious award of Oscar Award, Elephant Whisperer, and also every Indian cinema, now it is not 10 regional cinemas. Every Indian cinema is now, it is a pan-India cinema, it is a pan-world cinema. For that, our Ministry of Information Broadcasting, our dynamic minister, Sri Ashwin Vaishnavi's guidance, taking various steps to promote Indian cinema. One is the film facilitation office. You can just file your application in the website and you can get clearance from the concerned ministries. Amendment is to protect the producers from the piracy. So the government is always helping to the cinema and the foreign collaboration movies, the shoot in India. We are giving subsidy also to the producers.
In the ceremony, a special stamp honoring legends Raj Kapoor, Tapan Sinha, Akkineni Nageswar Rao and Mohammad Rafi were also unveiled by Information and Broadcasting Secretary Shri Sanjay Jaju along with other dignitaries.
भारत ने तीसरी बार हॉकी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में फाइनल मुकाबले में भारत ने वर्तमान ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से पराजित किया। दीपिका कुमारी ने तीसरे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल किया। दीपिका ने प्रतियोगिता में सर्वाधिक 11 गोल किए। इससे पहले जापान ने मलेशिया को 4-1 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
President Draupadi Murmu and Vice President Jagdeep Dhankar have congratulated Indian hockey team for winning Women's Asian Champions Trophy. In a social media post, President said the girls remained undefeated throughout the tournament, defended their title and recorded the third Asian Championship victory for India. In a social media post, Vice President said this victory showcases the team's exceptional skills, determination and discipline.
न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में अब समय है 6 महानगरों के प्रमुख समाचारों का। पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से जुड़े समाचारों के साथ हैं अनीता।
द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ चेन्नई वाज रिकॉर्डेड एज पुअर एंड मॉडरेट। द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस मे कॉज द पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। द लेवल्स आर नॉर्मल इन द स्टेशंस मेंटेन्ड बाय इंडस्ट्रीज, सेड अ टीएनपीसीबी ऑफिशियल। Meteorologists said the city experienced mist which can make dust and smoke particles suspended in the water vapor. Due to taunting strong winds, the particles remain suspended near Earth's surface. It has been stated that this is normal in this season and it is a short term. Sea Vigil 24, the fourth edition of the coastal defense exercise of the Indian Navy, commenced yesterday. This two-day nationwide exercise spans the entire coastline of India and it involves 6 ministries, 21 central and state agencies. Sea Vigil exercise bolsters the security of India's coastal assets comprising ports, oil rigs, vulnerable areas and cable landing stations. The Indian Space Research Organization ISRO Chairman S. Somnath has highlighted the importance of indigenization during his speech on space tech and defense production during the second day of Bengaluru Tech Summit yesterday. Indigenization helps reduce the costs and supports the startups. He said many technologies developed for our space program can be suitably put to use by our industries. He gave the examples of sensors developed by ISRO for application in the rocket and satellites. He said these sensors can be used in cars, adding that the car manufacturers in India import sensors at exorbitant costs. Somnath said that the automobile industries in India can work with ISRO to produce these sensors within the country at a low cost. He informed that ISRO produces the entire sensors needed for the space program within its facilities. President Draupadi Murmu will be in Hyderabad later this evening on a two-day visit. The president will be arriving at Begumpet Airport this evening and will be attending the Koti Deepotsavam event organized by a devotional TV channel at the NTR Stadium. The grand celebration will showcase a display of devotion with millions of lights. President Murmu is scheduled to deliver a keynote address at the Lok Manthan 2024, a cultural and intellectual event in Hyderabad tomorrow. The president will depart tomorrow afternoon for Delhi. Meanwhile, police have imposed traffic restrictions and traffic diversions at various junctions on several routes in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad due to the president's movement. The Telangana state government issued a health advisory against seasonal flu at the Met. Authorities in Hyderabad predict dry weather across Telangana for the next 7 days. The Director of Public Health and Family Welfare has said in the health advisory that low temperatures dropping to 15 degrees in some districts may increase the spread of acute respiratory infections like influenza, stating that seasonal influenza is a contagious respiratory infection caused by influenza viruses, the authorities cautioned the people to take preventive measures. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Alka Singh.
बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल दिल्ली सोलर पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर छत पर सोलर लगाने वाले वेंडर और मूल्य सूची की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सोलर पॉलिसी क्या है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिसका काम तेज गति से चल रहा है. वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र देवा ने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली सरकार अलग योजना बनाने की बजाय केंद्र सरकार की सूर्य घर योजना को ही दिल्ली में लागू कर देती, ताकि दिल्ली वालों को केंद्र की विस्तृत योजना का लाभ मिलता. राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की आपूर्ति के लिए कल नासिक से कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1336 टन प्याज लेकर दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची. इस प्याज को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिक्री के लिए भेजा जाएगा. रेल रैक द्वारा प्याज की विश्वसनीय और कम खर्च पर आपूर्ति के लिए प्याज का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है. रेलवे के अनुसार इस पहल से नासिक क्षेत्र के प्याज किसानों को थोक परिवहन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व का लाभ मिलता है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्णय लिया है. आदेशों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की और सीआईआई के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान श्री राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप 4 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं अनीता, दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के अंतर्गत अब मोमेंटम 2.0 दिल्ली सारथी ऐप के माध्यम से ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों के टिकट खरीदे जा सकते हैं. DMRC ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य ASI स्मारक टिकट और DMRC यात्रा टिकट दोनों की खरीद के लिए एक ही मंच प्रदान करना है. DMRC के अनुसार QR आधारित टिकट प्रणाली विकसित की जाएगी, जो दिल्ली मेट्रो सेवा और ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों में प्रवेश को सहज बनाएगी. बात कर ले मुंबई की, तो महाराष्ट्र की 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. और अनीता, आपको एक बात बताएं कि औसत मतदान के बावजूद कई वरिष्ठ मतदाताओं का उत्साह चरम पर था, क्योंकि वे वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर गए थे. इसमें गढ़चिरौली की 111 वर्षीय फूलमती विनोद सरकार, धूले की 103 वर्षीय दुर्गा बाघ और नांदेड़ की 105 वर्षीय शशिकला टिप्सेश्वर शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिवार की तीन पीढ़ियों के साथ मतदान किया. धाराशिव से 90 वर्षीय आनंदीबाई शिंदे, 94 वर्षीय पार्वती कसार, वहीं रत्नागिरी की 98 वर्षीय डॉक्टर मधुकर लुक्तुके ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया. लकवे से पीड़ित 84 साल की दयावती देसाई एम्बुलेंस से नंदुरबार जिले में अपने मतदान केंद्र पर पहुंची. निश्चित रूप से इनके जज्बे को सलाम. और इन्होंने जो बिल्कुल इलेक्शन होता है, जो हमारा जो चुनाव होता है, वो एक महापर्व की तरह होता है, और ये सब शामिल हुए. और बात कर ले कोलकाता की, तो अगले वर्ष कोलकाता में विश्व बंग वाणिज्य सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. उससे पहले राज्य के लघु उद्योग विभाग की ओर से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा. ये अभियान 20 दिसंबर तक हर ब्लॉक और नगर पालिका में आयोजित किया जाएगा. मुख्य सचिव मनोज पंत ने लघु उद्योग विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. कोलकाता में ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला के बाद अंतिम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी. आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और अनीता के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का. तो सबसे पहले बात करें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. तो दिल्ली की बात करें तो हल्की धुंध रहने की संभावना है, लेकिन अनीता, अभी बाहर हम निकले थे तो बहुत ठंड कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए बिल्कुल बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि धूप के झांसे में न आए और पूरे कपड़े पहन करके और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें. वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई की बात करें तो वहां आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं जॉय सिटी कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. अन्य महानगरों के हाल आप बताएं.
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 18 degrees and the maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 14 and a maximum of 29 degrees Celsius.
बिल्कुल. और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई. आज 21 नवंबर है तो आज जो है वो विश्व दर्शन दिवस है. ये प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है. वर्ष 2002 से यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की थी और वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा. और विश्व दर्शन दिवस उन दार्शनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए स्थान उपलब्ध कराया.
एंड टुडे इज द यूएन वर्ल्ड टेलीविजन डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द 21st ऑफ नवंबर. द डे रिकॉग्नाइजेस दैट टेलीविजन प्लेज अ मेजर रोल इन प्रेजेंटिंग डिफरेंट इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल. The UN acknowledges that television can be used to educate many people around the world, its issues and real stories that happen on the planet. On this day in 1996, UN General Assembly proclaimed November 21 as World Television Day to commemorate the day on which the first World Television Forum was held earlier that year. And we remember certain days also today. In 1877, Thomas Alva Edison presented the phonograph to the world. The phonograph marked a significant milestone in the history of audio recording and playback. The phonograph, also known as talking machine, was the first device capable of both recording and reproducing sound.
बिल्कुल. और अनीता, बड़ी दिलचस्प बात है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद 3.5 आने कीमत का प्रथम भारतीय डाक टिकट जय हिंद जारी किया गया था.
एंड इन द ईयर 1963 फर्स्ट Sounding rocket launched from Tumba Equatorial Rocket Launching Station, TERLS, thus started India's space program. In the year 1969, the first permanent ARPANET link was established between UCLA and SRI. It was a groundbreaking step towards the development of the internet. And in the year 1993, India and South Africa signed a historic pact on re-establishing diplomatic and consular relations after a gap of 50 years.
बिल्कुल. जरा सा पहले चलते हैं 1962 की बात कर लें. भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी.
And time now to remember people who are either born this day or who passed away today. And we begin this segment by remembering Sir Chandrasekhar Venkat Raman, who passed away on this day in 1970, known as C.V. Raman, was an Indian physicist known for his work in the field of light scattering. Using a spectrograph that he developed, he and his student K.S. Krishnan discovered that when light traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength. This phenomenon, a hitherto unknown type of scattering of light, which they called modified scattering, was subsequently termed as the Raman effect or Raman scattering. Raman received the 1930 Nobel Prize in Physics for the discovery and was the first Asian and the first non-white to receive a Nobel Prize in any branch of science. And he founded the Indian Journal of Physics in 1926. He moved to Bangalore in 1933 to become the first Indian director of the Indian Institute of Science. He founded the Indian Academy of Sciences the same year. He established the Raman Research Institute in the year 1948 and he worked to his last days. The Raman effect was discovered on 28th of February 1928 and the day celebrated annually ALKA by the government of India as the National Science Day.
बिल्कुल. और आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बावा को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. इस गायिका के नाम पंजाबी लोक गायन में 45 सेकंड की हैक का रिकॉर्ड था. गुरमीत बावा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अपने करियर में प्राप्त किए. वो जुगनी गाने वाले सिंगर्स में से एक थी.
अल्लाह दा लिया, अल्लाह, ओ दुश्मन मरे ते खुशी
और साथ ही वो पहली पंजाबी महिला गायिका थी जिन्होंने दूरदर्शन पर गाने गाए थे, और भारत सरकार ने इन्हें 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और बात कर लें जयंती और जन्मदिन की, तो आज हम याद कर रहे हैं केसरी सिंह बारहट को। प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साथ इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और ज्योतिष आदि का अध्ययन कर प्रामाणिक विद्वत्ता प्राप्त कर ली थी। केसरी जी के भाई जोरावीर सिंह बारहट और पुत्र प्रताप सिंह बारहट ने रास बिहारी बोस के साथ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकने के कार्य में भाग लिया था। केसरी सिंह बारहट ने प्रसिद्ध चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोठे रचे थे। और अब बात कर लें, आज हम याद कर रहे हैं मातृभूमि के वीर सपूत नायक यदुनाथ सिंह को, जिनकी आज जयंती है। इनका जन्म 21 नवंबर 1916 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के गांव खजूरी में हुआ था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 21 नवंबर 1941 को यदुनाथ सिंह को मनचाहा काम मिला, और उस समय वो मात्र 26 वर्ष के थे जब उन्होंने फौज में प्रवेश किया। और इन्हें मरणोपरांत 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका सेवाकाल 1941 से 1948 तक रहा। और इनके बारे में एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी कविता है कि पाक भारत की लड़ाई का गजब वो दौर था, हर तरफ बारूद बम और गोलियों का शोर था, वर्ष 48 महीना फरवरी था चल रहा, पाक अपने धृष्ट से हिंद को था चल रहा, भ्रिकुटियां जदुनाथ की तब आसमासी तन गई, सुर्ख रक्तिम लाल सी चक्षुओं में बन गई, भारती के लाल ने फिर मुट्ठियों को भींच कर शेर जैसी गर्जना की प्राण अरी के खींच कर।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एक्टर डायरेक्टर प्रेमनाथ मल्होत्रा, नोन एज प्रेमनाथ, एंड ही इज नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी मूवीज। ही मेड हिज डेब्यू विद द फिल्म अजीत इन 1948 एंड वेंट ऑन टू अपीयर इन ओवर 100 फिल्म्स थ्रू आउट हिज करियर। ही वॉज नॉमिनेटेड for 3 Filmfare Awards and later retired in 1985.
Jahan dal dal par sone ki chidiyan karti hain basera, wo Bharat desh hai mera, wo Bharat desh hai mera।
और प्रेमनाथ मल्होत्रा हिंदी सिनेमा के वो अभिनेता हैं जिन्होंने बतौर हीरो यूं तो सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन पहचान उनको खलनायक बनने के बाद ही मिली। और 21 नवंबर 1926 को जन्मे प्रेमनाथ, हालांकि खेलकूद के दिनों से ही अभिनय में रुचि रखने वाले थे। और प्रेमनाथ मल्होत्रा ने, आपने जैसा कि कहा, अजीत, जॉनी मेरा नाम, आन, तेरे मेरे सपने, अपना घर, बादल, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, बॉबी और कई अनगिनत फिल्मों में काम किया।
आप लोग कल आज हमारे यहाँ खाना खाइएगा सर, मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं।
क्या कमास्ते हैं
सर? वो भाभी को देखना चाहते हैं।
क्या कमास्ते हैं
सर? सर
हम आएगा, हम जरूर आएगा। हम अपना बेटी की खुशी के वास्ते किसी का भी दरवाजे पर माथा टेक सकता है, लेकिन खुद का नहीं टेक सकता है। कांता क्या कमास्ते?
क्यों
ना चाहो सोना चांदी।
And today is the birthday of Helen Ann Richardson Khan, popularly known as Helen, the Indian actress, dancer. She has appeared in over 1,000 films, making her a prolific performer in Hindi cinema. She is known for her supporting character roles and guest appearances in career spanning 70 years. Helen has received 2 Filmfare Awards, is also often cited as one of the most popular notch girls and cabaret dancers of her time.
और अनीता, जब हेलेन 13 साल की थी तो उन्हें समूह नृत्य में दर्जनों नर्तकियों के बीच डांस करने का अवसर मिला था।
In 2009 she was awarded the Padma Shri by the government of India।
और अनीता घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें
जी।
तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी। अलका सिंह और अनीता आनंद को अनुमति दीजिए।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।